एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। शहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। सबका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंह फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देख लो। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे मन हृदयों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा से भर दे। हमें तेरे वचनों को समझने के लिए मदद कर पिता, कि हम तेरे इच्छा के अनुसार तेरा रास्ता में चलने सके। मेरे संग हो पिता, जब मैं तेरे संवाद को बतलाता हूँ, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे। और मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो पिता, जो सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुन सके और समझ सके, उन्हें तू बहुत आयत से आशीष दे पिता। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देख लो। गलीली लोग जब फसह पर्व से वापस आए तो अपने साथ यीशु के किए हुए आश्चर्यजनक कार्यों का समाचार भी लाए। यरूशलेम के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा उसके कार्यों की सराहना की गई, जिसने गलील में उसके आने का मार्ग खोल दिया। बहुत से लोगों ने मंदिर के दुरुपयोग करने और याजों की लालच और अन्याय भरे व्यवहार की भर्त्सना किया। उन्होंने आशा किया कि यह मनुष्य, जिसने शासकों को भगाने पर मजबूर कर दिया था, इससे आशा कर सकते हैं कि वह हमें छुटकारा दिलाए। अब जो समाचार आया, उसने निश्चय कर दिया कि उनकी उम्मीद का भविष्य उज्जवल है। यह भी सूचना मिली कि भविष्यवक्ता ने अपने आप को मसीह घोषित कर दिया है, परंतु नासरत के लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। इस कारण से काना जाते हुए मार्ग में यीशु नासरत को नहीं गया। उद्धारकर्ता ने अपने शिष्यों से कहा कि एक भविष्यवक्ता को उसके अपने गांव में कोई सम्मान नहीं मिलता। लोग दूसरों के चरित्र का अनुमान अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। संकीर्ण और संसारिक विचार वाले लोग मसीह को उसकी दीनता भरे जन्म, निम्न श्रेणी के वस्त्र तथा दिन प्रतिदिन की कड़ी मेहनत को लेकर निर्णय करते थे। वे लोग उसके पवित्र विचारों और बिना दाग वाले चरित्र की सराहना नहीं किए। मसीह के काना पहुंचने का समाचार बहुत शीघ्र से पूरे गलील में फैल गया। कष्ट उठाने वालों और निरुत्साह लोगों में आशा का संचार उत्पन्न हो गया। कपरनहूम में एक अत्यंत प्रतिष्ठित यहूदी, जो राजा के दरबार में उच्च अधिकारी था, मसीह की ओर आकर्षित हो गया। उस अधिकारी का एक पुत्र एक ऐसी बीमारी से ग्रसित था जिसकी कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। चिकित्सक लोगों ने जवाब दे दिया था कि अब यह ठीक नहीं हो सकता, मतलब मर जाएगा। परंतु जब उस पिता ने यीशु के विषय में सुना, तो निश्चय कर लिया कि उससे सहायता मांगेंगे। बच्चा बिल्कुल मरणासन्न दशा में था और डर था कि उसके लौटने तक कदाचित वह जीवित ना रहे। फिर भी इस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने फैसला कर लिया कि वह स्वयं जाकर उससे विनती करेगा। उसने सोचा कि एक बाप के दुखड़े को सुनकर शायद उस महान वैद्य का हृदय पिघल जाए और मन में सहानुभूति जाग उठे। काना पहुंचने पर उसने देखा कि यीशु को चारों ओर से घेरे हुए बहुत बड़ी भीड़ है। व्याकुल हृदय लिए हुए भीड़ को चीरता हुआ उद्धारकर्ता के समीप तक पहुंच गया। उसका विश्वास डगमगा गया जब उसने देखा कि यह तो एक सीधा साधा साधारण वस्त्रों में धूल भरा थका हारा व्यक्ति है। वह शंका करने लगा कि जिस कार्य के लिए वह आया है, क्या उस कार्य को यह कर सकेगा। फिर भी यीशु से बातचीत करने का अवसर मिल गया। उसने अपने दुखड़े को बताया और विनती किया कि उद्धारकर्ता उसके साथ उसके घर चले। उसके शोक को तो यीशु पहले से ही जान गया था। इससे पहले कि वह अधिकारी अपने घर ले चले, मुक्तिदाता ने उसके कष्ट को देख लिया था। यीशु यह भी जान गया था कि उस पिता के मन में उसके प्रति विश्वास ने एक प्रकार की शर्त बना लिया है। जब तक उसकी इस विनती को स्वीकार नहीं कर लेता है, वह उसे मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। जब वह अधिकारी अपने मन की व्यग्रता के साथ उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए कि यीशु ही मसीह है, यह अधिकारी अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह तभी विश्वास करेगा जब वह उसकी विनती को स्वीकार कर लेगा। उद्धारकर्ता ने इस प्रश्नवाचक व्यक्ति के विश्वास और उन सामरी लोगों के सीधे साधे विश्वास में तुलना करने लगा जिन्होंने कोई चमत्कार या चिन्ह के विषय में कुछ नहीं पूछा था। उसके वचन जो सदैव स्थिर रहने वाले ईश्वरीय वचन है उनमें किसी के भी हृदय तक पहुंच जाने और कायल कर देने की क्षमता है। मसीह को अत्यंत दुख हुआ कि उसके अपने लोग जिन्हें पवित्र वचन सौंपे गए थे वे परमेश्वर के वचनों को जो अपने पुत्र के द्वारा बोल रहा है सुनने से भी इनकार कर देंगे। फिर भी उस अधिकारी को कुछ सीमा तक विश्वास था क्योंकि वह वहां तक चलकर आया था कि उस बहुमूल्य आशीष को प्राप्त कर सके। यीशु के पास उसकी आशा से भी बढ़कर आशीष थी। उसने केवल उस बच्चे को चंगा ही नहीं करना चाहा बल्कि चाहा कि वह अधिकारी अपने परिवार समेत उद्धार की आशीष पाने में सहभागी बने और कपरनहूम में एक मशाल जल उठे जो आने वाले समय में उसके कार्य क्षेत्र का केंद्र बनने वाला था। परंतु उस अधिकारी को अपने स्वयं के लिए उस बड़ी आवश्यकता को अनुभव करना था इससे पहले कि मसीह के अनुग्रह को प्राप्त करे। यह अधिकारी अपने देश के बहुत से लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। वे लोग अपने स्वयं के लाभ के उद्देश्य को लेकर यीशु में रुचि दिखाते थे। उन्हें आशा रहती थी कि उसकी विशेष सामर्थ द्वारा उन्हें लाभ पहुंचेगा और इस अस्थाई लाभ पर उनका विश्वास टिका हुआ था। परंतु अपनी आत्मिक बीमारी से अनभिज्ञ थे और अपनी ईश्वरीय अनुग्रह की आवश्यकता को नहीं देख रहे थे। बिजली की चमक के समान मुक्तिदाता के शब्द उस अधिकारी के हृदय को प्रकाशमान कर दिए। उसने देखा कि उसका यीशु से मिलने के लिए आना स्वाद से भरा था। उसका डगमगाता विश्वास उसे स्वयं को वास्तविक रूप में दिखाई देने लगा। अति क्लेशित दशा में उसने अनुभव किया कि कहीं उसकी शंका पुत्र के जीवन को ही ना ले ले। उसने जान लिया कि वह उसके सामने है जो हृदय की भाषा को पढ़ लेता है और जिसके लिए सब कुछ संभव है। दुख से बिहवल होकर वह चिल्ला पड़ा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। उसका विश्वास बिल्कुल याकूब के विश्वास के समान था जब वह स्वर्गदूत के साथ कुश्ती करते हुए चिल्ला पड़ा था, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उत्पत्ति 32:26। याकूब जैसे ही वह भी विजयी रहा। उद्धारकर्ता उस आत्मा को कभी नहीं छोड़ता जो उस पर आश्रित हो जाती है। उसकी उस बड़ी आवश्यकता को देखते हुए प्रभु ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। वह अधिकारी अपने मन में बड़ी ही शांति और प्रसन्नता अनुभव करते हुए, जैसा कि मुक्तिदाता के पास इससे पहले कभी नहीं हुआ था, वहां से चला गया। उसने केवल इतना ही नहीं विश्वास किया कि उसका पुत्र चंगा हो जाएगा बल्कि बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ भरोसा किया कि वह मुक्तिदाता है। उसने मुक्तिदाता के वचनों पर विश्वास कर लिया और उसे मुक्तिदाता मान लिया। उस घड़ी कपरनहूम में उस बीमार बच्चे के चारों ओर जो लोग एकत्रित थे उन्होंने देखा कि अचानक उस बच्चे में अद्भुत परिवर्तन आ गया है। रोगी के चेहरे से मृत्यु के चिन्ह जाते रहे, बुखार के स्थान पर स्वस्थ होने के चिन्ह दिखाई देने लगे, बुझी बुझी आंखों में प्रसन्नता के लक्षण चमकने लगे और कमजोर शरीर में स्फूर्ति का संचार होने लगा। इस बच्चे में कोई भी रोग के चिन्ह शेष नहीं रहे। उसका तपता हुआ शरीर कोमल और नम हो गया और वह शांति से सो गया। दिन की अत्यंत गर्मी में उसका बुखार जाता रहा। परिवार के लोग चकित हो गए तथा उनमें प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। काना कापरनहूम से बहुत दूर नहीं था, परंतु वह अधिकारी शाम को यीशु से मिलने के बाद अपने घर के लिए चल पड़ा। परंतु उसने अपने घर की ओर जाने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। दूसरे दिन प्रातःकाल वह अपने घर पहुंचा। उसका अपने घर किस प्रकार का आना हुआ? जब वह यीशु को ढूंढने के लिए घर से निकला था उसका हृदय शोक से भरा हुआ था। सूरज का प्रकाश उसके लिए कष्टदायक लग रहा था। चिड़ियों के मधुर गीत उसे ढोंग दिखाई दे रहे थे, परंतु अब उसके अनुभव में कितना परिवर्तन आ गया था। पूरी प्रकृति ही बदली बदली सी नजर आ रही थी। अब वह सब कुछ एक नई दृष्टि से देख रहा है। जब वह प्रातःकाल की बेला में यात्रा कर रहा है, ऐसा लगता है कि उसके साथ पूरी सृष्टि ही परमेश्वर की स्तुति कर रही है। अभी वह अपने घर से कुछ दूरी पर ही था कि घर के दास लोग उससे मिलने के लिए बाहर आए, ताकि उसके व्याकुल मन को शांति का समाचार दे सके। जो समाचार उन्होंने उसे दिया, उससे वह अचंभित नहीं हुआ, परंतु वे लोग यह नहीं समझ सके कि क्यों वह बड़ी व्यग्रता से पूछ रहा है कि किस घड़ी से उस बच्चे में ऐसा परिवर्तन आना आरंभ हुआ था। उन्होंने उसको बताया कि कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया था। यह वही घड़ी थी जब उस पिता को निश्चित उत्तर मिला था यीशु मसीह के द्वारा, तेरा पुत्र जीवित है। मुक्तिदाता ने उसे यह आश्वासन दिया था। ईश्वरीय प्रेम ने मरणासन बच्चे को छू लिया था। यह अधिकारी अब मसीह को और अधिक जानना चाहता था। बाद में जब उसकी शिक्षाओं को उसने सुना, तो वह और उसका पूरा घराना यीशु के शिष्य बन गए। उनका क्लेश पूरे परिवार के पवित्र मन परिवर्तन में बदल गया। इस चमत्कार का समाचार पूरे कपरनहूम में फैल गया, जहां पर मसीह की व्यक्तिगत सेवकाई के कार्य को करने का मार्ग तैयार हो गया था। जिसने कपरनहूम में उस अधिकारी को आशीष दिया था, वह हमें और आपको भी आशीष देने के लिए हर समय तैयार है। परंतु उस दुखी पिता के समान हम कभी कभी सांसारिक बातों की इच्छा करने लगते हैं, और जब वह विनती पूरी हो जाती है, तो हम उसके प्रेम में दृढ़ होने का दावा करने लगते हैं। जो हम उससे मांगते हैं, उससे भी बढ़कर बड़ी आशीष मुक्तिदाता हमें देना चाहता है, और वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देरी कर देता है, ताकि वह यह दिखा सके कि हमारे हृदय कितने छोटे हैं तथा हमें उसके अनुग्रह की कितनी आवश्यकता है। वह चाहता है कि हम अपनी उस खुदगर्जी को छोड़ दें जिसके लिए उसे ढूंढ रहे हैं। अपनी असहायपना और अति आवश्यकता को स्वीकारते हुए हमें पूर्ण रूप से उसके प्रेम में विश्वास और उस पर भरोसा करना है। वह अधिकारी विश्वास करने से पहले अपनी इच्छाओं की पूर्ति होना चाह रहा था, परंतु उसे यीशु के वचनों पर विश्वास कर लेना था कि उसकी विनती सुन ली गई है और आशीष भी दे दी गई है। इस शिक्षा को हमें भी सीखना है। यह इसलिए नहीं कि हम अनुभव करते हैं या देखते हैं कि परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है, ऐसा विश्वास करें। हमें उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास और भरोसा करना है। जब हम विश्वास पूर्वक उसके पास आते हैं, तो प्रत्येक विनती परमेश्वर के हृदय में प्रवेश कर जाती है। जब हमने उसकी आशीष के लिए प्रार्थना किया, तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि वह मिल गया, और उसे प्राप्त कर लेने के लिए उसे धन्यवाद भी कर दें। और तब हमें इस भरोसे के साथ अपने कर्तव्य में लग जाना चाहिए कि समय अनुसार हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। जब हम ऐसा करना सीख जाएंगे, तब जान जाएंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। परमेश्वर हमारे लिए समझ से कहीं अधिक करेगा, अपनी महिमा के धन के अनुसार करेगा, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार करेगा। यह प्रतिज्ञा हमें पौलुस अपने इफिसियों की पत्री का 3:20 में और 16 में और 7:1-19 में देता है। सचमुच में यीशु मसीह हमारा सहायक करने वाला है। वह हमारा मुक्तिदाता है। वह हमारे हरेक कष्टों को देखता है और जानता है। हमारे बताने से पहले वह जानता है और हमें मदद करने के लिए तत्पर रहता है। हमें चाहिए कि हम उसके पास आए। हमें चाहिए कि हम उस पर विश्वास करें। हम विश्वास करें कि वह कर सकता है और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, और उसके लिए हम धन्यवाद भी दें। हम लोग पहले में ही विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देगा, क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करता है और हमारा ख्याल करता है, वो हमारा रखवाला है। आइए हम उसको धन्यवाद दे और उस पर विश्वास रखे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए कि तू हम पर दया करता है, तू हमारे कष्टों को जानता है, तू हमें मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हमें यीशु मसीह के नाम से तुझ पर आने के लिए मदद कर और हमें मदद कर कि हम विश्वास करें कि तू हमारी सहायता कर सकता है। इसके लिए हमें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दे पिता, और पवित्र आत्मा का वरदान दे, हम सबों को आशीष दे। मेरे हरेक श्रोताओं को तो आशीषित कर पिता। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
Jesus power, super power.
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।